आज वामन द्वादशी है, श्रावण द्वादशी भी कहते हैं इसको, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी। इसी तिथि पर कई साल पहले, लाखों लाखों साल पहले, भगवान श्री हरि वामन देव के रूप में प्रकट हुए थे। उनके जन्म दिवस पर आज हम उनके आविर्भाव की कथा सुनेंगे। वामन देव एक बटु ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए थे, बलि महाराज का सब कुछ हरण करने के लिए, बलि महाराज के ऊपर कृपा बरसाने के लिए और अपने भक्त देवताओं को उनका स्वर्ग लोक लौटाने के लिए। आप तो जानते हैं कि सृष्टि के शुरुआत से ही दो तरह के लोग हमेशा रहते हैं, सुर और असुर। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको सुर कहते हैं, जो भगवान के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उनको असुर कहते हैं। लेकिन कभी कभी असुर भी सुर से बड़े भक्त हो जाते हैं, जैसे प्रह्लाद महाराज। प्रह्लाद महाराज असुरों के कुल में जन्म लिए, हिरण्यकश्यप के पुत्र थे वो, लेकिन सबसे ऊंचे भक्त बने। कभी कभी देवताओं में देखा जाता है कि उनको घमंड आ जाता है अपने ऐश्वर्य का, और इसलिए वो भगवान या भगवान के भक्तों के प्रति अपराध कर बैठते हैं और उनको तरह तरह के शाप मिल जाते हैं। इंद्रदेव को कितनी बार शाप मिले थे, स्वर्ग के राजा। तो ये दोनों तरह के जो लोग हैं, सुर और असुर, इन दोनों के बीच में अनादिकाल से युद्ध चलते आए हैं। काल के प्रभाव से कभी सुर विजयी होते और कभी असुर। तो एक बार ऐसे हुआ कि देवताओं की जीत हो गई, सुर, और जो असुरों के राजा थे बलि महाराज बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। बलि महाराज प्रह्लाद महाराज के पोते थे, प्रह्लाद महाराज के पुत्र विरोचन के पुत्र थे बलि महाराज। जब उनको बाहर ले जाया गया तो शुक्राचार्य, जो कि भृगु वंश में आने वाले एक शक्तिशाली ऋषि थे, उन्होंने संजीवनी मंत्र से न केवल बलि महाराज को लेकिन उनके कई साथियों को पुनर्जीवित कर दिया, उनको शक्ति पुनः दे दी। इसलिए बलि महाराज इतने कृतज्ञ हुए शुक्राचार्य के प्रति कि शुक्राचार्य को उन्होंने अपना गुरु मान लिया और बड़े श्रद्धा से शुक्राचार्य और अन्य भृगुवंश के ऋषियों की सेवा करते रहे। ऐसी श्रद्धा पूर्वक सेवा देखने पर ये सारे ऋषि मुनि प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि महाराज के ऊपर बड़ी कृपा की, बहुत आशीर्वाद दिया। बलि महाराज के द्वारा उन्होंने कई यज्ञ कराए और उन्होंने अपना ब्रह्म तेज बलि महाराज को दे दिया। वैसे क्षत्रिय को बहुत शारीरिक शक्ति होती है, लेकिन जो ब्राह्मण हुआ करते थे पहले जमाने में, उनकी शक्ति एक अलग तरह की शक्ति थी जिसको ब्रह्म तेज कहते हैं। और ये ब्रह्म तेज शारीरिक शक्ति या अस्त्र शस्त्रों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तो इस तरह से बलि महाराज बहुत शक्तिशाली हो गए। फिर से शुक्राचार्य ने उनको अपना शंख दिया, प्रह्लाद महाराज ने बलि महाराज को एक ऐसा फूलों का हार पहनाया जिसके फूल कभी मुरझाए नहीं जाते। और इस तरह से बलि महाराज ने ठान लिया कि अब मेरे हार का बदला मैं फिर से लूंगा और मैं 3 त्रिभुवन का राजा फिर से बन जाऊंगा और स्वर्गलोक की ओर फिर से निकल पड़े। उधर इंद्र और उनके अन्य देवी देवतागण यह इंद्रलोक से बड़े चिंतित होकर देख रहे थे कि बलि महाराज कितने बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं, और ये पहले के बलि महाराज नहीं लग रहे हैं, ये बलि महाराज तो बड़े तेजस्वी और शक्तिशाली लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी शक्ति बड़ी अद्भुत है। तो बड़े चिंतित होकर इंद्र और अन्य देव उनके गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने उनसे कहा कि बलि महाराज को इस समय आप हरा नहीं पाओगे, क्योंकि बलि महाराज को भृगु ऋषि के वंशज शुक्राचार्य आदि से आशीर्वाद मिला है। उनकी बहुत श्रद्धा पूर्वक सेवा करने फलस्वरूप बलि महाराज को इतनी शक्ति मिली है, इन ब्राह्मणों ने सारा ब्रह्म तेज बलि महाराज को दिया है कि इस समय आप लोग देवता लोग बलि महाराज और उसकी सेना को नहीं हरा पाओगे, संभव नहीं है, तो अपना भाग्य समझो इसको और यहां से निकल पड़ो, यही भगवान श्री हरि की इच्छा समझो। तो इस समय सारे देवताओं ने अपने अपने वेश बदलकर छुप के इधर उधर सारे ब्रह्मांड में चले गए। कोई एक रूप धारण करके कहीं छुप गया ब्रह्मांड के एक कोने में, कोई दूसरे कोने में गया, इस तरह से सारे ब्रह्मांड भर में ये देवतागण वेश बदल के चले गए। और बलि महाराज बड़े शानदार ढंग से प्रवेश कर गए अमरावती में, स्वर्गलोक के राजधानी में, और वहां पर राज करने लगे। तीनों भुवन के वो स्वामी रहे और इस तरह से राज करते करते कई साल बीत गए। उधर देवतागण इधर छुपते, कभी उधर भागते, ऐसा जीवन बिता रहे थे। उनकी मां अदिति देवी वो बड़ी दुखी हो गई थी अपने पुत्रों के इस दशा को देखकर। उनके पति कश्यप मुनि वन में गए थे तपस्या करने के लिए। अब कश्यप मुनि सुर और असुर दोनों के पिता हैं। कश्यप मुनि के दो पत्नियां थीं अदिति और दिति। जो अदिति हैं उनके पुत्र थे देवतागण इंद्र आदि, और जो दिति के पुत्र थे वो सब असुर थे। इसलिए दिति के पुत्रों को या असुरों को कभी कभी दैत्य भी कहा जाता है। तो देवता और दैत्य दोनों ही कश्यप मुनि के पुत्र। कश्यप मुनि वन से जब लौट कर आए अपने घर में, तो अपने पत्नी अदिति को बड़े शोक करते हुए देखा। अच्छी तरह से स्वागत सत्कार तो किया अदिति ने अपने पति का, लेकिन कश्यप मुनि समझ पाए कि कुछ तो गड़बड़ है। तो कश्यप मुनि ने पूछा कि अदिति देवी क्या बात है, क्या तुम्हारे धर्म के सिद्धांतों में कोई त्रुटि हुई है, क्या तुमने किसी ब्राह्मण किसी भक्त के प्रति कोई अपराध किया है, क्या तुमने किसी अतिथि का सत्कार ठीक से नहीं किया, क्या तुम नहीं जानती कि जिस घर में अतिथि का स्वागत अच्छी तरह से नहीं किया जाता, जिसको कम से कम थोड़ा सा जल और मीठे शब्द नहीं दिए जाते, वो घर घर नहीं होता बल्कि खेत में जैसे खड्डा होता है, और उस खड्डे में नाना प्रकार के चीजें होती हैं, उस प्रकार से खेत का खड्डा होता है, तो क्या तुमने ऐसे अतिथियों का अपमान किया है। इस तरह से कश्यप मुनि पूछते गए। फिर अदिति ने कहा, नहीं, आपसे जब हमने सीखा है कि धर्म का पालन कैसे करना है, मेरे धर्म के पालन में कोई त्रुटियां नहीं हुई हैं, परंतु मैं दुखी इसलिए हूं कि मेरे जो लड़के हैं, मेरे बच्चे हैं जो देवतागण हैं, वो अब बेघर हो गए हैं, उनको कोई घर नहीं, उनके निवास स्थान स्वर्गलोक से बलि महाराज ने निकाल दिया है, और इसलिए वो यहां वहां भटक रहे हैं। तो भगवान श्री हरि सुर और असुर सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं, लेकिन फिर भी जो सुर लोग हैं, जो देवतागण हैं, उनके लिए ज्यादा प्रिय हैं, क्योंकि वो उनके भक्त हैं। तो आप भी श्री हरि के प्रतिनिधि हैं, तो कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए। कश्यप मुनि आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे, हल्के से मुस्कान लेकर वो कहने लगे कि अरे देखो, केवल भगवान श्री हरि की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करने से सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। और वैसे जो हमारे भाग्य में लिखा होता है उतना मिलता है। कभी कभी काल के प्रभाव से, भगवान की इच्छा से किसी को कोई राज्य मिल जाता है, और कभी कभी वो राज्य उससे छीन भी लिया जाता है। तो इसमें शोक करके क्या फायदा है? ये सब क्षणभंगुर चीजें हैं। कोई शाश्वत चीज के पीछे तुम अपना प्रयत्न करो, भगवान विष्णु की भक्ति करो। लेकिन उस समय प्रवचन सुनने के भाव में नहीं थी अदिति देवी। तो फिर कश्यप मुनि ने सोचा कि अब यहां प्रवचन देकर भक्ति के बारे में बोलने से कोई लाभ नहीं होगा। इस समय अदिति देवी आरतो थी, आरती। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत अर्षभ। वो कहते हैं कि चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, जो पीड़ित हैं, जो कि भौतिक लाभ चाहते हैं, जो जिज्ञासु हैं और जो ज्ञानी हैं। तो अब कश्यप मुनि समझ गए कि उनकी पत्नी किस भाव में थी। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में बताता हूं जिसका नाम है पयो व्रत, जो कि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में किया जाना चाहिए, 12 दिन तक होना चाहिए और द्वादशी को खत्म होना चाहिए। और इस पयो व्रत से, जिसमें केवल दूध पीना है तुमको, तुम भगवान विष्णु को संतुष्ट कर पाओगी। और फिर कश्यप मुनि ने बड़े विस्तार में अदिति देवी को समझाया कि कौन से विधि विधानों का पालन उसे करना चाहिए, किस तरह से यह पयोव्रत का पालन होना है। और फिर अदिति देवी ने बड़े श्रद्धा पूर्वक ये पयोव्रत का पालन किया। उसके अंत में स्वयं भगवान विष्णु वहां उनके सामने प्रकट हुए। किस तरह से? कश्यप मुनि ने देखा कि अब मेरे हृदय में भगवान के अंश प्रकट हो गए हैं। और फिर धीरे से वो अदिति देवी के गर्भ में प्रकट हुए और गर्भ से फिर बाहर निकले। जब भगवान बाहर निकले अदिति देवी के गर्भ से, उन्होंने एक सांवला रंग धारण किया था जो उनका मूल रंग है, चतुर्भुज रूप था, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, सुंदर मुकुट और उनके सारे शरीर पर नाना प्रकार के गहने और रत्न थे, दिखने में बड़े सुंदर लग रहे थे। और जैसे ही अदिति देवी और कश्यप मुनि ने उनको देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। कश्यप मुनि जय जयकार करने लगे, दोनों ने प्रणाम किया भगवान को, जो कि उनके पुत्र के रूप में आए थे। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, कहा कि तुम्हारी तपस्या के फल स्वरूप मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया हूं। और फिर भगवान विष्णु ने अपना चतुर्भुज रूप बदल के एक बटु ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धारण किया, बहुत छोटे से, और इतने तेजस्वी स्वर्ण रंग के दिख रहे थे, बड़े सुंदर। और जब ऐसे प्रकट हुए तो सारे देवतागण वहां पर उनके छोटे भाई को देखने आए, क्योंकि ये सबसे बाद में जन्म लेने वाले बच्चे थे, तो सारे देवताओं के छोटे भाई हो गए। उपेंद्र, उप इंद्र, इंद्र के छोटे भाई, इसलिए उनका नाम है उपेंद्र। क्योंकि उन्होंने एक बटु रूप धारण किया था इसलिए उनका नाम वामन है। तो वामन देव इस तरह से प्रकट हुए। और क्योंकि एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे तो यज्ञोपवीत संस्कार भी करना था, लेकिन यह एक ऐसा यज्ञोपवीत संस्कार था जहां सारे देवी देवतागण वहां उपस्थित हुए। स्वयं सूर्य देव ने उनको गायत्री मंत्र सुनाया, अपने कान में गायत्री मंत्र दिया, और बृहस्पति ने उनको उपवीत दिया जो ब्राह्मण पहनते हैं अपने शरीर के ऊपर। कश्यप मुनि ने उनको एक जो कमर की पट्टी होती है, जो घास का बना होता है, वो प्रदान किया। पृथ्वी माता ने उनको अच्छा ब्राह्मण का, जो बटु ब्रह्मचारी का पोशाक दिया। सोमदेव अर्थात चंद्रदेव ने उनको कमंडलू दे दिया। अदिति देवी ने उनको एक कौपिन भेंट में दिया। ब्रह्मदेव स्वयं आए, उन्होंने उनको और एक कमंडलू दे दिया। सप्तऋषिगण आए, उन्होंने कुछ घास भेंट दिया। सरस्वती देवी आई, उन्होंने वामन देव को रुद्राक्ष की माला अर्पण की। कुबेर ने आकर भिक्षा मांगने के लिए एक पात्र दिया। उमा देवी मतलब भगवान शिव जी की पत्नी पार्वती देवी ने आकर पहली भिक्षा दी वामन देव को। और इंद्रदेव ने स्वयं आकर छत्री दे दी। तो साथ साथ ये यहां सामने जो तस्वीर है भगवान की, इस तस्वीर में ये सारे चीजें देखेंगे आप। तो प्रवचन के अंत में जब आप भगवान का दर्शन करने के लिए सामने आएंगे तो अवश्य इन सारे चीजों को देखिए। जो भी चीज अब वामन देव के पास है वो सब देवी देवताओं ने उनको भेंट दिए थे उनके यज्ञोपवीत संस्कार के समय। और ये यज्ञोपवीत संस्कार का समय है, सारे देवी देवतागण एकत्र हुए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। और इस समय ऐसे लग रहा था कि कोटि कोटि सूर्य वहां चमक रहे थे। हालांकि स्वयं सूर्य देव वहां पर उपस्थित थे लेकिन वामन देव के तेज की तुलना में सूर्य देव का जो तेज है वो केवल एक जुगनी के बराबर लग रहा था, जैसे जुगनू सूरज के समान हो सामने हो। फिर वामन देव ने अपना ब्रह्मदंड कमंडलू इत्यादि हाथ में लेकर वो निकल पड़े, सीधे चले गए पृथ्वी लोक के ऊपर, जहां पर नर्मदा नदी के तट पर भृगुकच्छ नाम के जगह में बलि महाराज वहां पर यज्ञ करने बैठे थे भृगु ऋषि के वंशज ब्राह्मण ऋषियों के निर्देशन में। और उनमें से सबसे प्रमुख थे शुक्राचार्य बलि महाराज के कुलगुरु। जैसे ही आकाश पथ से वामन देव वहां पर आए, उनका तेज देखकर सारे ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए। उनको लगा कि हमारा ब्रह्म तेज तो कुछ भी नहीं है, अपने आप को बहुत छोटे समझने लगे। और जब वामन देव वहां पर आए, सारे ब्राह्मण खड़े होकर उनको प्रणाम करने लगे। वो जानते नहीं थे कि ये भगवान विष्णु है, लेकिन केवल इस छोटे बालक का तेज देखकर वो समझ पाए कि ये कोई विशेष व्यक्ति है। और बलि महाराज वहां पर थे, तुरंत उठे। उन्होंने वामन देव का बड़े हृदय से स्वागत किया, सत्कार किया, उनको अपने सिंहासन पर बिठाया। सिंहासन पर बिठाकर उनके चरणों को शीतल जल से धोया। और जिस तरह से शिवजी ने अपने जटाओं में गंगा जी के जल को धारण किया था, ठीक उसी तरह से बलि महाराज ने भी इस चरणामृत को अपने सर पे धारण किया और थोड़ा पी भी लिया। और अपने जो परिवार के सदस्य थे उनके सर के ऊपर भी ये जल छिड़क दिया। और बड़े मीठे शब्दों में बलि महाराज वामन देव से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप यहां पर मेरे घर में आए हैं, ये मेरा अहो सौभाग्य है। आप जैसे शुद्ध ब्राह्मण और ऋषि जब गृहस्थों के घर में जाते हैं तो आप उनका घर शुद्ध कर देते हैं, तो आपने आकर न केवल मेरा जीवन शुद्ध कर दिया, मेरे कुटुंब को शुद्ध कर दिया, लेकिन सारी पृथ्वी शुद्ध हो गई है आपके चरणों के स्पर्श से। आप जैसे ब्रह्मचारी, आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, तो कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हम आपको दान में क्या दे सकते हैं। आपको गाय चाहिए, आपको सोना चाहिए, आपको भूमि चाहिए, या आपको किसी ब्राह्मण की कन्या चाहिए जिससे आप विवाह करना चाहते हैं, क्या भिक्षा चाहिए आपको। वामन देव बड़े प्रसन्न हुए बलि महाराज के मीठे शब्दों को सुनकर और कहने लगे कि हे राजन, आपके मीठे शब्दों से हम बड़े प्रसन्न हैं, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने खुले हृदय से भिक्षा या दान देने के लिए आपने वचन दिया है। लेकिन मैं तो एक ब्राह्मण हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मुझे ज्यादा कोई चीज नहीं चाहिए, मैं तो केवल 3 पग जमीन चाहता हूं। क्योंकि जरूरत से ज्यादा भी लेना यह उचित नहीं है। मैं जानता हूं कि आप तो बहुत बड़े राजा हैं, आप बहुत कुछ दे सकते हैं, परंतु ब्राह्मण के लिए उसकी आवश्यकता से अधिक कोई चीज मांगना यह उचित नहीं उसके लिए। जब बलि महाराज ने यह सुना तो बलि महाराज हल्के से हंसने लगे और कहने लगे कि अरे ब्राह्मण, तुम तो बहुत एक विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बोलते हो, अवश्य तुम्हारे बातों में बहुत शक्ति है, तुम्हारा ब्रह्म तेज बहुत है, लेकिन तुम्हारी बातों को सुनकर मैं समझ गया हूं कि तुम्हारे अंदर अभी बचपना भी है, अभी तुम्हारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है। मैं तो त्रिभुवनों का राजा हूं, भूभुवस्वः, तीनों लोकों का मालिक मैं स्वामी हूं, मैं तो तुम्हें सप्तद्वीप का एक पूरा द्वीप भी दे सकता हूं, मैं ढेर सारा सोना दे सकता हूं तुमको, लाखों लाखों गाय दे सकता हूं, इतना सब होते हुए तुम केवल तीन कदम जमीन मांग रहे हो। मेरे पास जब आओगे तो ऐसे कोई चीज मांगना चाहिए जो मेरे लिए योग्य हो, इतने तीन कदम जमीन मांगने से तुम्हें क्या मिलेगा। तो बलि महाराज कहने लगे, क्षमा कीजिए, वामन देव कहने लगे कि हे राजन, मैं तो ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण को अपने प्रारब्ध में जो मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की इंद्रियां वश में नहीं है तो उसको जितना भी मिले वो संतुष्ट नहीं होगा। जिस व्यक्ति के हृदय में अपने प्रारब्ध के प्रति संतुष्टि नहीं है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके काबू में नहीं है, उसके लोभ की भी कोई सीमा नहीं है, उसके काम की भी कोई सीमा नहीं है। अगर उसके सारा ब्रह्मांड भी मिल गया फिर भी वो असंतुष्ट रहेगा। कितने बड़े बड़े राजा इतिहास में हुए, जैसे कि महाराज गया, महाराज पृथु, उन्होंने कितने बड़े बड़े राज्य बनाए, लेकिन इतने बड़े राज्य बनाने के बाद भी उनकी इच्छाओं की सीमा तक नहीं पहुंचे। तो अगर मैं भी आपसे ज्यादा मांगूंगा, यह निश्चित नहीं है कि इन चीजों से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। हर एक व्यक्ति को अपने प्रारब्ध से संतुष्ट रहना चाहिए। जो हर एक व्यक्ति के कपाल में लिखा रहता है उसको स्वीकार करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। इसलिए हे राजन, मैं केवल तीन कदम जमीन ही चाहता हूं, केवल इतना ही मुझे आप दीजिए। उस समय शुक्राचार्य खड़े हो गए और बड़े बुलंद आवाज में बोलने लगे कि हे राजन, खबरदार, ये जो व्यक्ति बटु बाल ब्रह्मचारी के रूप में यहां आया है तुम्हारे सामने, ये कोई साधारण ब्रह्मचारी या ब्राह्मण नहीं है, ये जान लो कि ये स्वयं विष्णु है, केवल तुम्हें धोखा देने के लिए यहां पर आया है। जब तुम उसकी इच्छा पूर्ण कर दोगे तो वो तीनों कदम से, दो कदम से सारे ब्रह्मांड को नाप लेगा और तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह नहीं होगा, तुम्हें अपना सर देना होगा। और इस तरह से ये विष्णु की चाल है, ऐसे छल कपट करके विष्णु तुम्हारा सब कुछ छीन लेना चाहते हैं, इसलिए खबरदार, इसको ये वरदान नहीं देना। और अगर तुम कहो कि मैंने वचन तो दे दिया है, ये जान लो कि जब कोई व्यक्ति वचन ऐसे परिस्थिति में देता है, जब उसके जान का खतरा हो, जब ऐसी कोई परिस्थिति हो जिसमें वो गाय या ब्राह्मण को बचाने जा रहा हो या अपने जीवन को या अपने आमदनी को बचाने जा रहा हो, उस समय अगर वो झूठ बोले तो ऐसे झूठ में कोई बुराई नहीं है। आखिर में अगर आपसे सब कुछ हरण कर लिया जाए तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, फिर आप धर्म का पालन करोगे कैसे? वो धर्म जिससे हमारा सब कुछ हरण हो जाता है उसका पालन हमें नहीं करना है। और वैसे भी शास्त्रों में बताया जाता है कि अगर वचन देते समय हमने उसके पहले ओम नहीं कहा तो फिर वो वचन सच्चा नहीं है, खोटा वचन है, वो खोटा सिक्का, झूठा है वो वचन। इसीलिए ऐसे वचन के न पालन करने से भी इसमें कोई दोष नहीं है। तो जान लो कि ये तुम्हारे शत्रु इंद्र और अन्य देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए तुम्हारे ऊपर धोखा करने के लिए आए हैं, तो खबरदार रहना, मत देना इनको। तो बलि महाराज सोचने लगे कि अरे ये कैसे हो सकता है कि जब एक ब्राह्मण मेरे दरबार में आए हैं, मेरा कर्तव्य है उसको दान देना, और जब मैंने वचन दिया है कि वो कुछ भी मांग सकता है और उसने केवल 3 कदम जमीन मांगे हैं, और ये भी अगर देने के लिए मैं तैयार नहीं हुआ तो फिर मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। फिर वो शुक्राचार्य से कहने लगे कि हे कुलगुरु, आप अवश्य मेरे गुरु हैं, परंतु मेरी बात कृपया सुनिए। मैं गरीबी से नहीं डरता, अगर मेरा राज्य भी मुझसे छीन लिया जाए, मेरा धन छीन लिया जाए, मेरी मृत्यु भी हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं ब्राह्मण को धोखा देने से बहुत घबराता हूं, क्योंकि ये सबसे बड़ा अधर्म है। मैंने वचन दिया हुआ है कि मैं ये दान दूंगा, तो मुझे देना चाहिए, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये विष्णु है। विष्णु अगर होते तो ऐसे नहीं करते, या तो सीधे मेरे सामने आके युद्ध करते, या तो सीधे आके बोल देते। लेकिन अगर विष्णु भी हो, फिर भी वो ब्रह्मचारी या ब्राह्मण का रूप लेके आए हैं, इसलिए मुझे उनका सत्कार करना चाहिए। मैं अवश्य इस ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण करूंगा। उस समय शुक्राचार्य को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने शाप दे दिया कि ये मूर्ख, तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारा सारा ऐश्वर्य तुमसे छीन लिया जाएगा। तो बलि महाराज कुछ नहीं बोले, बलि महाराज अपने वचन पे डटे रहे, हिले नहीं। बलि महाराज ने जो किया वो सही किया। सच्चा गुरु वो होता है जो हमें भगवान के शरण में ले जाता है। अगर कोई व्यक्ति हमें भगवान के शरण से दूर ले जाए तो वो गुरु नहीं कहलाता, और अगर कोई गुरु ऐसे हमें आदेश देता है जो कि भगवान की शरणागति के पथ से विपरीत है, उल्टा है, तो ऐसे तथा कथित गुरु को हमें त्याग देना चाहिए। शुक्राचार्य ये भक्त नहीं थे, केवल तपस्या के बल पे उनको ब्रह्म तेज मिल गया था, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति भावना नहीं थी। शुक्राचार्य को यह डर था कि वामन देव अगर सब कुछ हरण कर लेंगे मेरे यजमान का तो मेरा क्या होगा, ये इच्छा थी उनकी, ये डर था उनके मन में, क्योंकि मैं यहां यज्ञ कर रहा हूं और बलि महाराज के लिए उसको इंद्रदेव के पद में, स्वर्ग के राजा के पद में बिठाने के लिए मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, करवाए उसके द्वारा, और इसकी वजह से मुझे इतना धन मिला है, इतना सम्मान है, इतनी शक्ति है, मेरी ऊंची पदवी है, तो बलि महाराज अगर नहीं रहेंगे और फिर से देवतागण राजा बन जाएंगे तो फिर बृहस्पति मेरे जगह में आ जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा। तो इस तरह से जो व्यक्ति सोचता है, अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है और भगवत भक्ति से विपरीत कोई आदेश हमें देता है, तो वो सच्चा गुरु नहीं हो सकता है। तो खैर, शुक्राचार्य तो सच्चे भक्त नहीं थे, लेकिन बलि महाराज तो धर्मपरायण राजा थे। उन्होंने कहा मन में, ठीक है, अगर मेरा सब कुछ छीन लिया जाएगा तो वही सही, लेकिन कम से कम धर्म का पालन तो मुझे अवश्य करना चाहिए। फिर बलि महाराज ने घूमकर वामन देव से कहा कि हे ब्रह्मचारी, हे ब्राह्मण, आपकी इच्छा मैं पूर्ण करता हूं, 3 कदम जमीन अवश्य ले लो। फिर उस समय वामन देव ने बड़े आराम से अपना पहला कदम लिया, थे तो छोटे से बच्चे, तो बलि महाराज ने सोचा छोटे बच्चे का 1 कदम कितना होगा। तो बलि महाराज बड़े शांति से बैठे, पहला कदम लिया, लेकिन जैसे पैर उठाया 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 और उठते गया, पैर नीचे ही नहीं आया, और पैर लंबा होता गया, लंबा होता गया, इतना लंबा हो गया कि बलि महाराज देख भी नहीं सके। वामन देव के चरणों के तले वो सारे ग्रहों को, लोकों को, स्वर्ग लोक इत्यादि सारे सब कुछ, सारा ब्रह्मांड देखने लगे। फिर वामन देव ने दूसरा कदम लिया, दूसरा कदम लिया तो उनकी जो कर कमल की जो छोटी उंगली है वो ब्रह्मांड के आवरण को छेद कर गई और वहां से विरजा नदी का जल इस ब्रह्मांड के भीतर आया और भगवान श्री हरि जो कि वामन के रूप में आए थे उनको चरणों को धोकर आया, इसलिए वो गंगा जी बन गई, चरणामृत है गंगा जी। और इस तरह से गंगा जी का आगमन इस ब्रह्मांड के भीतर हुआ और वहां श्री वामन देव के कर कमलों के नाखून का तेज इतना जबरदस्त था कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी सोचने लगे ये तेज कहां से आ रहा है जिसकी वजह से मेरे लोक का तेज बिल्कुल तुच्छ हो गया है। फिर उन्होंने देखा कि अरे ये तो भगवान है, भगवान के चरण कमल दूर आए हैं। और दो कदम ले लिए वामन देव ने, फिर सारे ब्रह्मांड में भीतर देख रहे थे तीसरा कदम कहां रखा जाए। और फिर वामन देव ने पुनः अपना बटु रूप धारण कर लिया और फिर से बलि महाराज के सामने खड़े हुए और कहने लगे कि हे राजन, आपने तो कहा था कि आप मुझे तीन कदम जमीन दोगे, आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि आप धर्म परायण राजा हैं, आप ब्राह्मण को झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, आपके वचन को पूर्ण करना चाहते हैं, आपने इतना सब कहने के बाद फिर भी मेरी इच्छा की पूर्ति आपने नहीं की। तो बलि महाराज अब समझ गए कि ये स्वयं विष्णु है, तो उन्होंने कहा कि हां अवश्य मैं मेरी वचन को पूरी नहीं कर पाया, इसलिए मैं एक ही चीज आपको दे सकता हूं और वो है मेरा सर। तो बलि महाराज ने अपना सर झुकाया और वामन देव ने अपना तीसरा कदम बलि महाराज के सर के ऊपर रख दिया। इस समय बलि महाराज को गरुड़ देव ने आकर बांध दिया वरुण के रस्सी से और एक साधारण गुनहगार की तरह अपना सर झुकाए हुए बलि महाराज बद्ध अवस्था में वहां बैठे, लज्जित थे कि मैं मेरा वचन पूर्ण नहीं कर पाया। उधर प्रहलाद महाराज जो कि बलि महाराज के दादा थे वो आए, प्रहलाद ने देखा वामन देव आए हैं, उनको दंडवत प्रणाम किया, फिर अपने पोते की ओर देखा कि पोते की दशा क्या है। बलि महाराज ने प्रहलाद को देखा बड़े शर्मिंदा हो गए, क्यों शर्मिंदा इसलिए हो गए कि उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे महान भक्त का पोता हूं लेकिन मैं मेरे ब्राह्मण के प्रति वचन को पूर्ण नहीं कर पाया, इसलिए प्रहलाद के आने पर उन्होंने सर झुका दिया। प्रहलाद ने वामन देव से कहा कि हे प्रभु, आप जो भी करते हैं वो परिपूर्ण है, आपने मेरे पोते बलि महाराज को देवताओं से राज्य छीन कर दे दिया, वो आपका कार्य है, आपकी कृपा है, और अब यही राज्य आपने मेरे पोते से छीन कर आप देवताओं को वापस देना चाहता है, ये भी आपका कार्य है, ये भी आपकी कृपा है, सब कुछ वैसे ही आपका ही है, कभी आप इससे निकालते हैं उसको देते हैं, कभी उसको निकालकर इसको देते हैं, है तो सब आप ही का, सब आपकी कृपा है। और वाकई है ना यही बात, इस दुनिया में हमारा कुछ नहीं है। जैसे बाजार में रुपए के नोट होते हैं, वो एक आदमी के हाथ से दूसरे आदमी के हाथ में जाता है, दूसरे के हाथ से तीसरे आदमी के पास जाता है, ऐसे रुपए के नोट घूमते रहते हैं, किसी का नहीं है वो रुपए का नोट, घूमते रहता है, ना हमारा है ना आपका है। कितने भी रुपए का नोट आप रखेंगे, जब तक कि आप किसी को देंगे नहीं उसका क्या लाभ होगा, घर में रख के ऐसे बिस्तर के नीचे रखेंगे तो कोई फायदा नहीं, उससे आप कुछ खरीद नहीं सकोगे। अगर आपको कुछ खरीदना है तो वो नोट किसी को देना होगा, तब वो आपको कुछ देगा। तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहता है, हम एक जगह आते हैं कहते ये हमारा घर है, ये हमारी भूमि है, ये सब कुछ है, लेकिन ये छोड़कर हमें कहीं जाना होगा और दूसरा व्यक्ति आके उसका इस्तेमाल करेगा। इस तरह से एक बार ऐसे हुआ कि अकबर राजा, अकबर बादशाह को थोड़ा घमंड हो गया था अपने राज्य का, तो बीरबल ने सोचा कि राजा को थोड़ा कुछ सिखाना पड़ेगा। तो वो जानते थे कि अकबर राजा अपने बगीचे में हर रोज शाम को सैर करने के लिए जाते थे, तो बीरबल वहां एक फकीर का वेश पहनकर, बड़े लंबे दाढ़ी वगैरह पहनकर वो उस बगीचे में लेट गए। और अकबर जब शाम को सैर करने के लिए आए, उन्होंने देखा कि अरे राजमहल के अंदर ये फकीर कहां से आ गया, क्या चौकीदार मेरे काम नहीं कर रहे हैं, सिपाही सो गए, क्या हो गया? तो आके वो फकीर के पास बोलने लगा, ए कौन हो तुम, इधर कहां से आए हो, जानते नहीं ये किसका घर है, मैं कौन हूं नहीं जानते? तो फकीर ने आंख ऊपर किए, आराम से सो रहे थे वहां पर, क्या चाहिए, तुम कौन हो? मैं राजा हूं, बादशाह हूं हिंदुस्तान का। अच्छा, ये महल किसका है? मेरा महल है। अच्छा, आपका महल है, तो कब से आपका महल है? जब से मेरा जन्म हुआ। तो आपके जन्म के पहले ये किसका था? मेरे पिताजी का था। उसके पहले किसका था? उनके पिताजी का था। और आपके बाद ये किसका हो जाएगा? मेरे बेटे का हो जाएगा। उसके बाद किसका हो जाएगा? उसके बेटे का हो जाएगा। तो राजन, ये तो महल क्या, ये तो धर्मशाला है, थोड़े दिन के लिए आप आके रह के जाएंगे, फिर आपका बेटा आएगा, वो रह के थोड़े दिन जाएगा, फिर उसका बेटा आएगा, वो थोड़े दिन रहेगा, वो चले जाएगा। तो आप धर्मशाला में एक कमरा आपको जो मिला है, उसके बारे में इतना घमंड करने से आपको क्या मिलेगा? ये आपका नहीं है, कुछ आपका नहीं है, आप तो चंद दिनों के लिए मेहमान है इधर, आप थोड़े दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। फिर अकबर ने जान लिया, अकबर के होश ठिकाने आ गए और तुरंत पहचान ले कि ये कोई फकीर वकीर नहीं है, ये तो मेरा बीरबल ही है। केवल क्योंकि केवल बीरबल ही है जो इस तरह से अकबर से बोल सकते थे। तो इस तरह से प्रहलाद को भी पता था कि भगवान जो चाहे वो हमको दे सकते हैं, जो चाहे हमसे ले भी सकते हैं। हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले कि उनको क्यों ज्यादा धन दिया, हमको क्यों कम दिया। अरे भगवान की इच्छा, इसलिए हमें कभी दूसरों के धन से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, दूसरों के गरीबी में खुशी नहीं लेनी चाहिए। अगर दूसरों को ज्यादा धन मिला है, इसका मतलब है कि स्वयं भगवान ने उनको दिया है। किसी दूसरे व्यक्ति को यश मिला है, प्रतिष्ठा मिला है, उसको बड़े गाड़ी बंगला उसके पास है, तो भगवान ने दिया है उसको। भले उसने चोरी से लिया हो, डकैती से लिया हो, वो चोरी या डकैती का फल उसको बाद में मिलेगा, लेकिन डकैती करने के बाद भी भगवान ने ही तो दिया है ना उसको। तो हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए उनसे, हमें अपने संपत्ति से जितना भी है भगवान की कृपा से, उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो फिर भगवान बोलने लगे कि हे प्रहलाद, मैं बड़ा संतुष्ट हूं आप सबसे। वो बलि महाराज की ओर देखकर बोलने लगे, हे बलि महाराज, आप ऐसे एक राज्य में आए हो जिसमें प्रहलाद जैसे महान भक्त हुए हैं, और आपके जो वंश है, आपके जो पूर्वज हैं, उसमें कितने ऐसे महान लोग रहे हैं जो कभी दान लेने से हटे नहीं, सब शूरवीर। देखो प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष कितने शक्तिशाली थे कि स्वयं भगवान श्री हरि को वराह रूप लेकर फिर उनका वध करना पड़ा। और जहां तक तुम्हारे दादा प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यप का सवाल है, वो इतने शक्तिशाली बन गए कि स्वयं विष्णु भगवान के प्रति आक्रमण करने के लिए आए, उनसे युद्ध करने के लिए आए, और विष्णु ने सोचा कि ये इतना शक्तिशाली है तो मैं इसके सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा, तो मैं कहां छुप जाऊं? तो मैं केवल एक जगह छुप सकता हूं, और वो है हिरण्यकश्यप का हृदय। क्योंकि असुर प्रवृत्ति के लोग जो हैं, वो वास्तव में कभी अंदर नहीं देखते, केवल बाहर देखते हैं, चमक धमक की चीजें क्या है भोग करने के लिए, अपने अंतःकरण में भगवान बैठे हैं उस ओर देखते ही नहीं है। तो विष्णु भगवान जानते थे, ऐसा वामन देव बोल रहे हैं, स्वयं विष्णु बोल रहे हैं अपने ही बारे में। और ये बोलते हैं कि विष्णु जान गए कि हिरण्यकश्यप कभी अपने हृदय में नहीं देखता है, केवल बाहरी चीजों से आकर्षित होता है, इसलिए वो जाकर उसके नसिकाओं से प्रवेश करके हिरण्यकश्यप के हृदय में बैठ गए। और हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि विष्णु कहां गया, अपने निवास स्थान से भाग गए, तो शायद वो उस स्थान चले गए होंगे जहां से कोई लौटकर नहीं आता, मतलब उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा हिरण्यकश्यप सोच रहे थे। तो इस तरह से वामन देव ने बहुत गुणगान किया बलि महाराज का, लेकिन कहा कि आप ने इस तरह से अपना वचन पूरा करके मुझे बहुत संतुष्ट किया है। वचन तो नहीं पूरा किया, लेकिन आपने, अब आप वचन से सही रहे, आपके गुरु के कहने पर भी आपने आपका वचन तोड़ा नहीं, और क्योंकि आप वचन पूरी तरह से निभा नहीं पाए, इसलिए आपको पृथ्वी लोक के नीचे जाना पड़ेगा। मैंने आपके लिए एक विशेष लोक तैयार किया है विश्वकर्म द्वारा, जिसका नाम है सुतल, और वहां पे आपको ऐसे ऐश्वर्य मिलेंगे जो कि देवलोक में भी नहीं मिलते। और प्रहलाद, आप भी जाकर आपके पोते के साथ बड़े ऐश्वर्य से आराम से रह पाओगे, और मैं स्वयं वहां पे आपके लोक में आकर द्वारपाल के रूप में आपकी सेवा करूंगा, और वहां पर आप मुझे हमेशा इस चतुर्भुज में, चतुर्भुज रूप में दर्शन कर पाओगे। उस समय बलि महाराज के जो सैनिक थे, उन्होंने देखा कि हमारे राजा तो इस तरह से बद्ध अवस्था में है, वो तो नम्र है, वो तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन हमें आक्रमण करना चाहिए। विष्णु ने छल कपट किया है, धोखेबाजी की है, एक ब्रह्मचारी के रूप में आकर हमारे राजा का सब कुछ हरण कर लिया है। तो वामन देव के सामने आकर आक्रमण करने लगे। उस समय जो विष्णु दूत आए उनके साथ, बड़े हंस के उन्होंने आसानी से इन सारे सैनिकों को खत्म कर दिया। तब बलि महाराज ने सारे सैनिकों से कहा कि ऐसा मत करो, ये भगवान की इच्छा है। जिस तरह से जब हमें स्वर्ग लोक का प्रभुत्व मिला था, उस समय देवतागण भाग गए थे, स्वयं भगवान विष्णु ने हमें स्वर्ग लोक दिया था, वही विष्णु हमसे अब छीन के ले जा रहे हैं। किस्मत सर्वशक्तिमान है हे मेरे असुर मित्र, इसलिए काल हमारे पक्ष में अब नहीं है, इसलिए इस हार को स्वीकार करो और संतुष्ट रहो। इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु ने बलि महाराज का सब कुछ हरण कर लिया, और फिर स्वर्ग लोक इंद्रदेव और अन्य देवताओं को वापस दे दिया। तो भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो हमें लगेगा कि भगवान ने देवताओं के प्रति बहुत कृपा की, क्योंकि उनकी चोरी की हुई संपत्ति वापस उनको लौटा दी, और बलि महाराज के प्रति उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया, ऐसे हमें लग सकता है। परंतु भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो कौन भाग्यशाली थे, बलि महाराज या इंद्रदेव? बलि महाराज। क्यों बलि महाराज ज्यादा भाग्यशाली थे? क्योंकि भगवान के चरण कमल बलि महाराज के सर पे पड़े। बलि महाराज ने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया भगवान विष्णु के चरण कमलों में, जो कि इंद्र भी नहीं कर पाए। अपना सब कुछ की बात तो दूर है, जब श्री कृष्ण पारिजात का वृक्ष ले जाना चाहते थे, एक वृक्ष उठाकर ले जाना चाहते थे, तो इंद्रदेव ने श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया था। लेकिन बलि महाराज असुर होने के बाद भी उन्होंने अपना सब कुछ भगवान के चरण कमलों में अर्पित कर दिया। बलि महाराज के दादा प्रहलाद महाराज ने कहा है, भक्ति की परिभाषा क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसात पितौ विष्णु भक्तिश्चन नवलक्षणा। ये भक्ति के नौ पद्धतियां हैं, जिनमें से नौवा है आत्मसमर्पणम, आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ समर्पण करना। और इसके आदर्श एक प्रतीक हैं बलि महाराज। लोग इंद्रदेव के गुणगान नहीं करते हैं आज, हालांकि इंद्रदेव को अपना राज्य वापस मिल गया, लेकिन राज्य में क्या किया इंद्रदेव ने? नंदन कानन में भोग किया। लेकिन इंद्रदेव से ज्यादा भोग बलि महाराज को सुतल लोक में मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ स्वेच्छा से भगवान विष्णु के चरण कमलों में अर्पित कर दिया, और आज तक उनका यश विद्यमान है। आज भी लोग उनका गुणगान करते हैं, उनके गौरव का इधर उधर बातचीत करते हैं हर भक्तों के सभा में। इस तरह से बलि महाराज की जीत हुई, इंद्रदेव की नहीं। हालांकि बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो बलि महाराज हार गए, इंद्र जीत गए, लेकिन भक्ति के दृष्टि से देखा जाए तो इंद्र हार गए, बलि महाराज जीत गए, क्योंकि उनको भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई। इसलिए अगर कोई बटु ब्रह्मचारी आपके घर में आए कि हमको भिक्षा दे दो, तो डरिए मत, कर दीजिए अर्पण। अगर आपका सब कुछ चले भी जाए तो कम से कम आपको ये तो निश्चित है कि आपको भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी, आपको कृष्ण भक्ति निश्चित है। वामन देव भगवान की जय, वामन द्वादशी महोत्सव की जय, हरे कृष्णा। आज प्रवचन थोड़ा छोटा किया क्योंकि आज जन्माष्टमी के उपलक्ष में अवसर पे जो बच्चों के लिए स्पर्धाएं किए थे उनके पुरस्कारों का वितरण होना है, तो कृपया सभी यहाँ बैठे रहिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलिएगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sab boliye, jor se boliye, aur jor se. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai. Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai. Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai. Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai. Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai. Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुल आनंद राधा गोकुल आनंद राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नीताय गौर हरि बोल हरि बोल नीताय गौर हरि बोल नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताय गौर हरि बोल 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 नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल